बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए कामदा नाथ महाराज की। हाँ श्रोता प्रेमियों, ये सुपर कैसेट यानी टी सीरीज के द्वारा चित्रकूट की महिमा का प्रसंग चल रहा है, जिसका कि भाग दो अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। यानी सभी बातों का कहने का तात्पर्य यह है कि चित्रकूट की नदियां, चित्रकूट के पहाड़, ये सभी जो हैं चित्रकूट की बड़ाई कर रहे हैं। विद्वानों ने भी कहा है कि दो बार जाओ द्वारिका और त्रिवेणी जाओ तीन बार, और चार बेर जाए पुत्र करहु बल धाई से। पांच बेर गया नाथ और छह बार नीम सार, सात बेर जाए गंगा अंगहू नहाए से। जितने फल होत कूट तीर्थ स्थान किए, जितने फल होत कूट तीर्थ स्थान किए, उतने फल होता श्री चित्रकूट आए से, चित्रकूट आए से। अरे जितने फल समस्त तीर्थ करने के बाद होते हैं, आप कई बार हर एक तीर्थ में चले जाएं, लेकिन यदि चित्रकूट में नहीं आते हैं तो आपका तीर्थ यात्रा करना सफल नहीं होता। बोले जितने फल बार बार तीर्थों में जाने से होते हैं, उतना फल यदि एक बार चित्रकूट में जाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। चित्रकूट भगवान श्री राम का धाम है। संतों का ऐसा मत है कि 12 वर्ष तक भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे। एक दिन की घटना है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में बैठे हुए हैं, तो वहां पर खटक शिला जो है, देवताओं की नारियां और देवता तक जो हैं दर्शन करने के लिए खटक शिला के पास आते हैं। कहा गया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए और समाचार सुन सब मुनि आए। समाचार सुन सुन करके देवी देवताओं ने सुना तो नाना प्रकार के भेष बना करके चित्रकूट में आने लगे। काहे के भेष बनाए कि कोल किरात भेष धर आए। कोई भील बनकर आया, कोई कोल बनकर आया, कोई किरात बनकर आया है। कोल भील यानी आदिवासियों का भेष बना करके वहां पर सुंदर तड़कों की कुटिया सजा करके और पुनः प्रभु के दर्शन करके चले गए। तो भगवान श्री राम की प्रशंसा देवताओं के पुत्र जयंता ने भी सुनी, बोले भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। ये सारे देवलोक में प्रचार हो रहा है। सभी लोग कहते हैं कि चित्रकूट में अखंड ब्रह्मांड कोट पारब्रह्म आए हैं, तो चलो जरा हम भी उनके दर्शन करावें। तो चित्रकूट में खटक शिला में जब आप लोग जाते हैं या यात्रा करते होंगे, तो चित्रकूट में एक स्थल है खटक शिला। उस खटक शिला के समीप में जब जयंत आया तो क्या देखता है कि चित्रकूट में प्रभु ने जो बड़ी ही सुंदर लीला किया, इसी चित्र में यह भी घटना हुई कि देवताओं के पुत्र जयंता, जो ऐसे महान राजा, देवताओं के राजा के पुत्र होते हुए उनके भी मोह होने गया, यानी उनके मोह पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि ये पार ब्रह्म है, तो उसने क्या किया, कौए का भेष बनाया।
बोले सूरपत,
क्या हुआ,
सूरपत सुतधर बायस भेषा,
कौए का भेष बना करके भगवान की महिमा जानने के लिए चल दिया। और क्या किया, राम की पत्नी जानकी के चरणों में चोच का प्रहार करता है। जब भगवान राम को यह ज्ञात हुआ,
सीता चरण चोच हति भागा, महामंदमति कारण कागा।
मां सीता के चरणों में चोच मार करके भागा, इतने में प्रभु ने सोचा कि ये हमारे प्रभाव को देखने के लिए आया है कि हम कौन हैं। तो भगवान श्री राम ने एक सीक बाण जो है उसके पीछे लगा दिया। अब क्या,
जयंता भागा भागा घूमता है, हर जगह गया,
हर किसी से मिला, हर किसी से कहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा आओ हमारे पास बैठ जाओ, हमारे समीप आ जाओ। क्योंकि संसार में परमात्मा के द्रोही को अपने पास कोई नहीं बैठा सकता। भैया,
भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे तो सब अपने पास बिठाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर से भगवान की रक्षा भरा हाथ ही हट जाए उसे भैया रक्षा के लिए कौन बैठा सकता। बोले धर निज रूप गयो तुपाही।
अंत में क्या हुआ भैया,
देखिए उस जयंत को ध्यान आया, उसने अपना असली रूप बनाया और अपना असली रूप बना करके अपने पिता के पास गया, यानी ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, पिताजी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले क्या बात है,
जयंता ने कहा देखिए ये सीख मान जो है मेरे पीछे लगा हुआ है।
बोले, कहने लगा ये आया।
बोला चित्रकूट में मैं भगवान की शरण में गया था, मुझे शंका हो गई कि ये ब्रह्म नहीं है, तो मैंने उनकी पत्नी के पैर में चोंच का प्रहार कर दिया, उन्होंने सी का बाण मेरे पीछे लगा दिया जिसके ताप से मैं जला जा रहा हूं, और अगर ये मेरे समीप आ गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा चलो हट, तू प्रभु का बैरी बन करके और मेरे पास आया है, चल हट जा। जयंत वहां से भी बिचारे भगा दिए जाते हैं, बैठने के लिए भी कोई इनको नहीं पूछता है।
वहां से जब चले, बड़ा दुख हो रहा है, काहू बैठन कहां न कोई, काहू बैठन कहां कोई, राख को सकई राम कर द्रोही, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता,
नारद ने देखा। नारद जी को कहा गया है कि संत नहीं है, संता है, संता। श्रोता प्रेमियों, जरा इस बात पर भी आप विचार करें, रामचरित मानस में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बाबा की लेखनी यानी तुलसीदास जी की लेखनी ने संत की जगह संता कह दिया। तो संता का मतलब बाबा गोस्वामी जी ने किस उदाहरण से दिया है, मैंने नहीं दिया।
रामचरितमानस में चार जगह ये प्रसंग आया है।
बोले कहा?
तो एक तो नारद जी महान संत नहीं है, कहा जा रहा है नाम नारद जी महान संत नहीं है, संता है संता। बोले अब मोहिम,
देखिए पहला बार संता कहां आ रहा,
अब मोई भा भरोस हनुमंता।
अशोक वाटिका में देखिए,
अब मोई भा भरोस हनुमंता कि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता।
संत नहीं संता हो गया।
और हरि अनंत हरि कथा अनंता, अब मोहि भा अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बोले अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बोले अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कहाई सुनाही दीदी ये सब संता, सुन परस सब सुन परस भगवर संता।
अरे मिथिलावासी जितने भी हैं भैया ये सब संता थे, और इधर जो हरि कथा सुनता है वह भी संता है, और अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज ये संत नहीं है संता है, और देव ऋषि नारद ये भी संत नहीं संता है। और जब महान संत ने देखा तो देव ऋषि नारद ने कहा, अरे जयंत तूने और नहीं भगवान राम से विरोध किया, तुझे कोई विरोध करने वाला दूसरा नहीं मिला, विरोध भी किया तो भगवान राम से। अरे देख नहीं रहा है कि चित्रकूट में उनका आगमन हो चुका है, समस्त देवी देवता भेष बदल बदल करके उनके दर्शन करने आ रहे हैं, और तुझे मोह जो गया। अरे ये तेरा अहंकार था, जा अभी तो तूने देखा प्रभु के क्रोध को, अब उनकी दया देख, तेरे पीछे जो सीख मार लगा है इससे तुझे कोई नहीं बचा सकता संसार में, जा उन्हीं प्रभु के चरणों में गिर जा, जब उनकी दया हो जाएगी तो तेरी मृत्यु बच जाएगी, जाओ जयंत जाओ प्रभु की शरण में जाओ। आज सुनकर के जयंत प्रभु की शरण में आया और आकर के प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु ने कहा, जयंत तू मेरी शरण में आ गया, यद्यप तूने कार्य तो बड़ा गलत किया है, जो करने के योग्य नहीं था, दंड देने के योग्य है, लेकिन तुझको हम दंड देंगे जरूर, क्योंकि अगर ये चित्रकूट जिसका राजा ये राम है, ये राम राज्य है, क्योंकि राम राज की कल्पना महाराज दशरथ कर रहे थे अयोध्या के अंदर कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। लेकिन प्रेमियों, राम को राजा अयोध्या का नहीं बनना था, न बना पाए। भगवान श्री राम के बंटवारे में आज बन का राज्य आ गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, वह सब भांति भये बड़े काजू। अरे मां से भगवान राम ने कहा, मैया मुझे पिता ने अवध का राजा नहीं बल्कि जंगल का राजा बना दिया है, जो जिस जगह मेरी जरूरत है मैं वहां का राजा क्यों बनूं जहां पर मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं वहां का राजा बनूंगा जहां पर मेरी आवश्यकता है। पर राजा के रूप में 12 वर्ष तक चित्रकूट में बैठे रहे, क्योंकि जो मेरा इधर का काज है जंगल में सुपात है, तो मां मैं क्यों ना वहां जाऊं, क्योंकि बंटवारे में भगवान राम के राज्य का कहां से हुआ है कि गंगा के किनारे से। इधर जब भगवान राम गंगा के किनारे आकर के गंगा पार कर जाते हैं, गंगा पार से राम का राज्य शुरू हो जाता है। और इधर चित्रकूट के प्रांगण में जिस समय भगवान श्री राम आए, मां गंगा इस पार बह रही हैं, बंटवारा हो गया, लोगों ने कहा कि पहला नागरिक कौन मिला राम राज्य का, पहला नागरिक कौन है, मांगी नावन केवट आना, कहा ये तुम्हारे मन में जाना। पहला नागरिक है भगवान के राज्य का केवट, क्योंकि भगवान श्री राम अपने ऐसे प्रजावासी, ऐसे नागरिक चाहते थे जो कि डर की वजह से हां हजूरी ना करें। कहा है ना किसी ने कि रहीमन निंदक राखी आकन कुटी छवाए, अगर कोई आपके सामने आपकी बुराई करने लगता है तो आप बड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके मुख पर आपकी निंदा करता है वो आपका असली मित्र है, क्योंकि वो आपके अंदर की बुराइयां निकाल करके आपके सामने रखता है। और जो मुंह पर बड़ाई करे बिना मतलब मियां मिट्ठू बने, चापलूसी करे, पीछे आपकी बुराई करे, ऐसा व्यक्ति व्यवहार करने योग्य नहीं होता। तो प्रभु राम चाहते थे कि हम अगर चित्रकूट के राजा बने हैं तो हमारे राज्य के नागरिक ऐसे हों कि अगर कोई हृदय में बात है, अगर हमें कोई कमी है, तो वो फौरन निडर होकर के हमारा सामना करके हमारी गलतियों को बतावें। और बताया केवट कैसा नागरिक था, कि बर तीर मारई लखन पे, जब लग्न पांव पखारी हो तब लग्न तुलसी दास नाथ पार आज उतारी। केवट ने कहा कि लक्ष्मण चाहे बाण मार दे, मुझे डर नहीं मरने का, लेकिन जब तक पग नहीं पखारूंगा, जब तक आपके चरणों की धूल नहीं ले लूंगा, चरणों को धो नहीं लूंगा। तो श्रोताओ, कहने का मतलब यह है कि भगवान राम को चित्रकूट कितना प्यारा था। भगवान राम चित्रकूट में 12 वर्षों तक रहे। श्री राम ने जयंता से कहा कि मैं यहां का राजा हूं, और राजा के राज्य में अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसे दंड अवश्य दिया जाता है, और दंड ना दिया जाए यह भी अनुचित है। राज्य का कर्तव्य है कि गलती करने वाले को दंड देना, और यदि हम तुमको दंड नहीं देते हैं तो लोग हमारे सामने आ जाएंगे और ताने मारेंगे, ताने देने लगेंगे, इसलिए हमें तुम्हें दंड जरूर देना है। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, एक नयन करी तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दिया, एक आंखी फोड़ दी, यानी कहा संसार को एक आंख से देखो। और एक नयन, एक दिन का मतलब ये है कि भगवान ने अपने नयन और उस भक्त जयंता के नयन एक कर लिए। एक नयन कर तजा भवानी, राम चित्रकूट के राजा हैं। आप सभी लोग इस चित्रकूट में आते हैं तो हर जगह के दर्शन करते हैं, और चित्रकूट की पावन भूमि पर आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो यही ईश्वर से कामना करते हैं कि जैसे अभी हमने आपको बतलाया है कि हमारा जीवन चित्रकूट में पशु के रूप में, पत्थर के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, यदि बन जाता है तो वास्तव में हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। किसी ने, क्योंकि हमारे चित्रकूट में एक ऐसे संत हैं जो अपने आप को सखी भाव मानते हैं। भाइयों, चित्रकूट की और महिमा क्या है? चित्रकूट में एक ऐसे ऐसे महात्मा आपको मिलेंगे जो सखी भाव के संत कहलाते हैं। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी जटाएं, और उनके हाथों में चूड़ियां भी होती हैं, वो चूड़ियां पहने होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को अपना दूल्हा मानते हैं और अपने को परमात्मा की दुल्हन मानते हैं। और बड़े प्रेम से चित्रकूट में वो सखी भाव के संत क्या गाते हैं कि निर्मोही निर्मोही के हैं भैया राघव, सखी नाचे रसीली। अनसुईया की सुरसरी धारा, अनसुईया की सुरसरी धारा, जामिली कुष्ट कियो विस्तारा। एक बूंद जिम पीली, एक बूंद जिसने पीली, सभी नाचे रसीली। तो चित्रकूट की महिमा संतो क्या है भाइयों, क्या है कि चित्रकूट के अंदर सखी भाव के संत आपको मिलेंगे। कबीरदास जी ने भी जितने भी भजन लिखे हैं वो सब भगवान को अपना पति मानकर और अपने को भगवान की पत्नी मानकर के ही सारे भजन लिखे हैं। जैसे गुरिया मन का कजरवा डारो धोए, ससुरिया एक दिन जाय का परी, इत्यादि अनेकों अनेक। तो सखी भाव के संत भी प्रेमियों श्रोताओं यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो भाइयों, अभी आपने प्रभु श्री राम को देखा कि चित्रकूट में पधारे, वहां की पावन महिमा सुनी। लेकिन हां, चित्रकूट में ऐसे कूट हैं, ऐसे स्थल हैं कि जिन स्थानों पर हम और आप जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं समझते। चित्रकूट में हम जा करके सर्वप्रथम मां मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। ये मंदाकिनी गंगा जो अपावन, जो भी इसमें जाता है वो पावन हो जाता है। कितने पत्तों का उद्धार करने वाली, कितनी पत्तों का उद्धार करने वाली ये काशी, पापों से कल्पित नहीं होती। मंदाकिनी मां गंगा जो है आज सुंदर चित्रकूट में बह रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो श्रोताओं, हम अपनी कथा आगे बढ़ाएं, उससे पहले आइए एक बात बता दें, यदि कभी आपको हमसे कोई पत्र व्यवहार करना है या फोन द्वारा बात करनी है तो हमारा पता आप नोट करें, नवीन कुमार मिश्रा, लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, पलिया कला, जिला लखीमपुर खीरी, पिन कोड 26 29 02, और फोन नंबर नोट करें, कोड नंबर यानी स्टडी नंबर 058 71 यानी 0587 1, और फोन नंबर 34
072 यानी 3 4 0 7 2 इस फोन नंबर पर आप हमसे सीधे संबंध बना सकते हैं। बोलिए हनुमंत लाल की
जय।
तो श्रोताओं, ये गंगा लाने वाला कौन है? क्योंकि इस गंगा में स्नान हम और आप करते हैं, जिसे कहते हैं भगीरथ गंगा। और इतने बड़े बड़े राजा हो गए, तपस्या करने वाले हो गए, भगवान राम के पूर्वज ऐसे हुए कि जो अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए अखंड वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन किसी में ये सामर्थ्य नहीं रहा कि मां गंगा का देवलोक से मृत्यु लोक में आगमन हो जाए। लेकिन ऐसे एक प्रतापी हुए महाराजा भगीरथ कि जो गंगा को देवलोक से मृत्यु लोक में लाए। आज हम और आप वहां जाते हैं, स्नान करते हैं। इसी प्रकार से चित्रकूट की गंगा इन्हें लाने वाला कौन है? हमारे बाबा गोस्वामी जी कहते कि सुर सर धार सुर सर धार नाम मंदाकिनी सो सब पावक पातक पात सुर सर धार नाम मंदाकिनी सो सब पावक पातक पात धार ये भी देवलोक से आई, तभी इसका नाम मंदाकिनी पड़ा, जो समस्त पापों को दूर कर देती है, समस्त पापों को जो हमारे आपके जीवन से या हमारे आपके जीवन में जो पाप हैं, उन सब से, या जो भी इस मंदाकिनी या गंगा में डुबकी लगाते हैं तो हमारे पाप वो सब ले लेती है, पाप दूर हो जाते हैं। क्योंकि इधर गंगा है ये मंदाकिनी जो सब पापों को दूर करती है, और उधर ये गंगा है, उस गंगा में आप हम और सब स्नान करते हैं। तो वहां का भी वर्णन है क्या? दरस परख मुख मंजन नाना हरा ही पाप कावे पापों को दूर करती हैं, लेकिन चित्रकूट में जो गंगा है, प्रेमियों यहां दो गंगा है, और संत महात्मा दोनों में स्नान करते हैं, और दोनों का जल अमृत के समान है, उसे पान करते हैं। बोले एक गंगा तो मंदाकिनी है और दूसरी गंगा राम भगत जहां सुर सरी धारा राम भगत जहां सुर सरी धारा अवसर आई ब्रह्म प्रचार प्रसारा सही ब्रह्म प्रचार प्रसारा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
तो संत महात्मा राम भक्ति रूपी गंगा में स्नान करते हैं और इस तन की मां मंदाकिनी गंगा, मां अनसुईया जो महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी, ये अपनी तपस्या के बल से इसे भूलोक पर लाई या गंगा लाई। ये वृतांत हम आपको सुनाते हैं कि ये कब की बात है। मृत्यु लोक में मां अनसुईया मंदाकिनी गंगा लाई, सत्य पर लाई, ऐसी पतिव्रता नारी, ऐसे धर्म को निभाने वाली अत्रि ऋषि समाधिक्त है, अत्रि मुनि समाधि लगाए हैं, कैसे गंगा आई। ये एक रोज की बात है श्रोताओं, अत्रि मुनि समाधि लगाए हुए हैं और मां अनसुईया उनकी प्रतीक्षा में उनके सामने बैठी हैं कि हमारे स्वामी कब अपनी समाधि खोलें, कब हमसे बोलें, कब हमारे समक्ष आवें। मेरे स्वामी की समाधि कब टूटे, मेरे लिए क्या आदेश हो जाए, बैठी हुई है सामने, पता नहीं मेरे स्वामी की समाधि कब टूट जाए और मेरे स्वामी मेरे लिए कौन सी आज्ञा दे दे। इसलिए वो सतीत्व पर बैठी हैं। तो श्रोता प्रेमियों, उसी समय क्या होता है देखिए, एकाएक अत्रि मुनि जाग उठते, बोले फौरन पानी लाओ, एकदम उनकी निद्रा खुलती है और सामने देखा अनसुईया बैठी हुई है। तो उनसे अत्रि मुनि क्या कहने लगे,
एकाएक मुनि वर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ। एकाएक मुनिवर जाग उठे, बोले फौरन पानी लाओ। वह बोल उठी स्वामी स्वामी, वो बोल उठी स्वामी लाई लाई, स्वामी मत घबराओ। दौड़ रही थी यहां वहां, लिए कमंडल हाथों में, मानसुईया दौड़ रही थी यहां वहां, हर वन पशु पक्षी प्यासे से, हर वन पशु पक्षी प्यासे से चिल्लाती जाती कहां कहां। अरे झरने सुर सरी सब सूख रहे, झरने सुर सर सब सूख रहे, वन तरुओं के हैं पात नहीं, चींटी भी प्यासी फिरती थी, चींटी भी प्यासी फिरती थी, पशुओं की कहता बात नहीं। अनुसुईया जी से पानी मांगा, कमंडल लेकर के दौड़ पड़ी। लेकिन देखती हैं सारा संसार प्यासा है, सारी नदियां सूख चुकी हैं, पत्ते सूख चुके हैं, पशु पक्षी यहां तक चींटी तक बेचारे प्यासे घूम रहे हैं, कहीं पानी की नजर ही नहीं पड़ रही है। अनुसुईया जी विचार करती हैं कि आज मुझे धिक्कार है कि मेरे पति व्रत धर्म को धिक्कार है कि मैं आज अपने पति को जल नहीं पिला सकती। चिंतित मां अनुसुईया जी उस समय बड़ा निराश हो जाती। पातिव्रत जागृत हो उठा इनके अंदर, पातिव्रत जागृत हो उठा, लिया हृदय में ठान, प्रीतम को जल मिले या निकल जाए ये प्राण, या तो मेरे प्राण निकल जाएं या आज अपने हाथों से अपने प्रीतम को मैं जल पिलाऊंगी। उसी समय पातिव्रत धर्म जाग उठता है। मां सुईया अपने मन में संकल्प करती हैं कि या तो मैं अपने पति के लिए जल लेकर के आऊंगी या तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा मां सुईया कर लेती हैं और निवेदन करती हैं कि हे महाप्रभु, अब मेरा ये पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं क्या। हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे मैं विनय हमारी है, तुमसे ये विनय हमारी है, अब आओ जल्दी आ जाओ, अब आओ जल्दी बुला रही तुमको पति भक्ता नारी है। माँ गंगे लाज बचाओ तुम, माँ गंगे लाज बचाओ तुम, पाताल वाहिनी निकल पड़ो, पाताल वाहिनी निकल पड़ो, अब मेरी लाज बचाओ तुम। क्या होता है श्रोता प्रेमियों, फिर हर हर शब्द हुआ भाई, निकली गंगा जो लहराती, बहनों सतियों की महाशक्ति, बहनों सतियों की महाशक्ति, अब कलम नहीं है लिख पाती, प्रार्थना मान सुईया ने जब किया तो पाताल वासिनी मां गंगा तत्काल हर हर शब्द निनाद करती हुई इस मृत्यु लोक में आ गई। बोलो गंगे मैया की। प्रेमियों, तत्काल मान सुईया जल लेती हैं कमंडल में
और प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास जाकर के अपने प्रण की पूर्ति करती हूँ। इसलिए माँ मंदाकिनी गंगा माँ अनसुईया की लाई हुई है। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है क्या कि सुर सरधारी सुर सरधारी नाम मंदाकिनी सभी ये संसार में मृत्यु लोक पर सब लोग खुशियां मनाने लगे, आनंद छा गया। जो जीव प्यासे थे सबको पानी मिल गया। तो भैया महासती शिरोमणि श्रीमान अनसुईया मंदाकिनी गंगा को लाने वाली हैं। तो हम और आप चित्रकूट को में आकर के पहले वहीं स्नान करते हैं। हमने इस कथा में मां गंगा कैसे आई, मंदाकिनी कैसे आई ये सुनाया। इसके बाद आप लोग एक स्थान पर और जाते हैं जो चित्रकूट में भक्तजन जाते हैं दर्शन करने के लिए। वह पहुंचते हैं कहां, एक सुंदर बड़ा स्थान है। देखिए योग्य जो देखने आए हैं वो तो इसका महत्व सुनकर के बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन जो नहीं देखने के लिए गए वह भी जो टी सीरीज कैसेट के माध्यम से चित्रकूट की महिमा की कथा सुन रहे हैं, वह अगर चित्रकूट आएंगे तो इस स्थान का दर्शन करेंगे। कौन सा स्थान, जिसे हम और आप गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। नाना रूपों के माध्यम से संतों ने चित्रकूट की महिमा का गायन किया है। बहुत से ऐसे स्थान हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। इस चित्रकूट में एक ऐसा स्थान है जहां समस्त तीर्थों का जल है, जिसे आप और हम जानते हैं भरतकूप के नाम से। क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम का राजतिलक होने के लिए गुरु वशिष्ठ ने पूछा गया कि भाई इसमें क्या क्या लगेगा, गुरु वशिष्ठ ने कहा आनहुं सफल सुति रथ पानी, समस्त तीर्थों का जल लाया जाए, अति आवश्यक है। क्योंकि राम का तिलक इसी से होगा, जो समस्त तीर्थों का जल मंगवाया गया। लेकिन अब वह जल काम से कहां आए, क्योंकि राज की जगह भगवान राम का वनवास हो गया है। भगवान श्री राम से मिलने के लिए श्री भरत जी आए तो साथ में वह जल लेकर गए कि मैं चल करके उस वन में ही प्रभु का राज तिलक करूंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हुआ है वनवास और ये राज तिलक यहां नहीं हो सकता। राज तिलक तो राज सिंहासन पर बैठकर ही हो सकता है। बोले तो क्या किया जाए, बोले इसे यहीं पर छोड़ दो। अत्रि ऋषि के साथ श्री भरत जी महाराज आए तो वही स्थान है भरतकूप, यानी एक कुआं था। उस कूप में अत्रि ऋषि ने कहा बेटा भरत समस्त तीर्थों का जल इसी कूप में छोड़ दो, और जो इस कूप में आकर के स्नान करेगा, इस जल को स्पर्श करेगा, उसे जन्म जन्मान तक कोई पाप नहीं होगा, सारे पाप उसके दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से चारों तरफ आश्रम है। कुछ दूर में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो आप चित्रकूट से किसी भी साधन द्वारा जा सकते हो। पहले तो ये सारा चित्रकूट प्रांगण था, संत महात्मा नित्य प्रति पद यात्रा करते थे, पैदल भ्रमण करते थे, लेकिन हम आप चित्रकूट आते हैं लेकिन साधन होते हुए भी और ऐसे स्थानों पर नहीं जाते जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो ऐसे महामुनि हैं जिन्हें भगवान श्री राम ने भी पूछा मैं कहां रहूं, वही स्थान है जहां परम शक्ति मां अंबा श्री सीता जी जिस समय भगवान राम के सरव किया में करते हुए रावण का वध किया, रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहुंचे, राज तिलक हुआ और कुछ दिनों के बाद सीता का त्याग भी कर दिया। तो मां सीता कहां ऋषि वाल्मीकि स्थल पर, क्योंकि यहां जो गंगा है उस गंगा में जब मां सीता डूबने को तैयार हुई तब ऋषि वाल्मीकि जी दौड़ पड़े। इस स्थान का एक नाम है शांति निकेतन, इसी स्थान का नाम है शांति निकेतन जो महर्षि वाल्मीकि नाम से भी प्रसिद्ध है। और प्रेमियों, चित्रकूट प्रांगण में ही एक तरफ कौन बैठी हुई है जो हमारे जीवन में चार शत्रु हैं, काम क्रोध मद लोभ। तो चित्रकूट में जो साधक आता है, जो काम अपनी ओर खींचता है और मोह अपनी ओर खींचता है, चारों अपनी अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन सामने कौन बैठे हैं, श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमंत लाल की जय। जिससे हम आप लोग जानते हैं हनुमान घाट, जो हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारे चित्त की चंचलता को दूर करते हैं और साधना की ओर लगा देते हैं। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, जो स्थान हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है और कुछ दूर स्थित चित्रकूट में जब आप जाएंगे, क्योंकि जब चित्रकूट आते हैं तो थोड़ी दूर और आप चले जाएं, जहां एक कर्म की प्रतीक बह रही है, कौन, विधि निषेध में करी बलिहारी, विधि निषेध में करी बलिहारी, करूं कथा अभी नंदा स्वामी। मां गंगा बह रही है और चित्रकूट जो है में मां गंगा बह रही है, और वहां से कुछ दूर थोड़ी थोड़ा परिश्रम आपको अगर कर लें, आप परिश्रम करें, परिश्रम करने की बात है, मां जमुना बह रही है और मां जमुना के किनारे एक गांव है जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसे अब तुलसी तीर्थ यानी राजापुर के नाम से कहते हैं, जहां पर बाबा गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। आज भी प्रांगण में रखा हुआ है बाबा गोस्वामी दास जी के कर कमलों से लिखित रामचरित मानस वहां रखी हुई है, क्योंकि आप तो हम लोग छापा में पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने किस प्रकार से लिखा, यानी बाबा तुलसीदास जी ने अपने हाथों से रामायण कैसे लिखी, वो कौन सा कागज था, वो कौन सी कलम थी, ये आपको देखने के लिए राजापुर में मिलेगा। क्योंकि चित्रकूट प्रांगण जहां आप कहीं भी घूमने जाएंगे तो आपके मन की चंचलता अवश्य दूर हो जाएगी और मन एकाग्र हो जाएगा, ऐसे सुंदर स्थल है। तो आप सभी लोग चित्रकूट आने वाले भक्तगण, ये हमारा कहना है कि अपना ध्यान जरूर रखें कि चित्रकूट यदि आवे तो कुछ दिन, दो चार दिन का समय लेकर के आवे और चारों तरफ भ्रमण करें। वहां चारों तरफ तीर्थ स्थल है, देव मंदिर है, बड़ी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। प्रेमियों, हम आपको यह कथा टी सीरीज के माध्यम से सुना रहे हैं, हमने समय के अभाव के कारण थोड़ा थोड़ा प्रसंग रखा है, जैसे मां अनसुईया का बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ी लंबी कथा है, तो हमें टी सीरीज के माध्यम से जो है ये आपको कथा हमने सुनाई। और भी कथाएं हम इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप ब्रह्मचरित मां का जो है भैया ये प्रकरण सुन रहे हैं। धीरे धीरे मैं इस प्रकरण को अंतिम की तरफ ले चलूं। तो देखिए, गंगा के किनारे कहां तमाम भक्त नहाते नहाते आज मां गंगे की क्या प्रार्थना कर रहे हैं
कि गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तर तारण तरणी हो मैया संकट हरणी गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी ब्रह्म कमंडल निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई शंकर जी की जटा में आकर शंकर जी की जटा में आकर लहर लहर लहराई शंकर जी की जटा में आकर लहर लहर लहराई आगे हुई गई तीन धारा तारण तर आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई
आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई
आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई
आगे आगे चले भागीरथ पीछे गंगा माई
राजा सगर के सौ पुत्रों को राजा सगर के सब पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुंचाई कर दियो भगतन को निस्तारा तारण तर बोलो सियावर रामचंद्र की
जय
बोली हनुमंत लाल की
जय।
हाँ तो श्रोता बंधुओं, ये चित्रकूट की महिमा की कथा का मैं समापन करूं। उससे पहले आप फिर अपने वहीं पुराने स्थान पर आ जाएं। वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर हमें रहने का स्थान आप बताएं, हम कहां रहें। वाल्मीकि मुनि बड़ा प्रसन्न होकर के कहते हैं वाह रे राम वाह, अपने भक्तों को इतना सम्मान दे देते हो। भगवान अपने भक्तों को बहुत मानते हैं ना। कहा है अपने भक्त को कितना मानते हैं।
न रोए वन गमन पर आप न रोए पिता की मृत्यु पर न रोए वन गमन पर आप न रोए पिता की मृत्यु पर न रोए वन गमन में आप न रोए पिता की मृत्यु पर वही प्रभु गिद्ध को कर ले आज आंसू बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते।
भक्तों का कितना मान बढ़ाते हैं भगवान।
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा
राम ते अधिक राम कर दासा। राम ते अधिक राम कर दासा।
अरे वाल्मीकि मुनि कहते हैं प्रभु से,
जग पेखन तुम देखन हारे, हर शंभु नचावन हारे। केहू ना जानही जो मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को
सोचा नहीं जी देहू जनाई, सोचा नहीं जी देहू जनाई, जानत तुम ही हो जाई।
तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगति उर चंदन।
तो पूछऊ मोही की रहाऊ कहा, पूछऊ मोही की रहाऊ कहा, मैं पूछत सकचाऊ, जहां न होत तहां देहू कही, तुम्हें दिखाऊं खाऊ। सुनो राम, कहां हम बताएं तुमको रहने के लिए, संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं रहते, अरे जहां कहां पर आपका स्थान नहीं है, सभी जगह तो आपका स्थान है। लेकिन ठीक है, अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो ठीक है, आप चित्रकूट में रहिए, बड़ा सुंदर स्थान है। और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के बताने पर प्रभु राम 12 वर्षों तक चित्रकूट में निवास करते रहे। श्रोता प्रेमियों, अपनी कथा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार प्रभु का नाम बोल लें।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे की जय जय श्यामा की जय जय, राधे की जय जय श्यामा की जय जय, गोविंद